ओम शांति। राजयोग को अच्छी तरह से समझ लिया और उसका अभ्यास भी करना आरंभ कर लिया है। अभी जो मैं विषय लेने जा रही हूं वो है राजयोग, एक आध्यात्मिक यात्रा कैसी है। हम सभी यात्राओं का अनुभव तो कर चुके होंगे, आप सभी कोई न कोई यात्रा पर गए होंगे, कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, बालाजी, माउंट आबू भी यात्रा स्थान है, तो आप तीर्थ करने यहाँ आए हैं। परंतु ये जितनी भी यात्राएं होती है वो इस संसार की यात्राएं हैं, जहां जाकर के मनुष्य फिर वापस आ जाता है अपने घर में। लेकिन यह राजयोग भी एक यात्रा के समान है, परंतु इस यात्रा पर जाकर फिर वापस कलयुग में हम नहीं आते हैं। तो ये कैसी यात्रा है, इसे हम कहते हैं रूहानी यात्रा, या इसे कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा। वो यात्राएं तो जिस्म के साथ, शरीर के साथ होती है, आत्मा अपने शरीर को लेकर जाती है इस यात्रा पर। लेकिन इस यात्रा पर शरीर नहीं जाता, लेकिन केवल आत्मा यह यात्रा करती है मन और बुद्धि के द्वारा। तो राजयोग वह राजमार्ग है जिस मार्ग से ये यात्रा होती है। इसमें हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, केवल दर्शन करना ही मात्र लक्ष्य नहीं है, दर्शन करके वापस आ जाएंगे या कुछ दान पुण्य करके आएंगे, कुछ पूजा पाठ करके आएंगे, अपनी इच्छाएं व्यक्त करके आएंगे और थोड़ी सी शुद्धि का अनुभव करके आएंगे। परंतु ये एक ऐसी यात्रा है जिस यात्रा के द्वारा आत्मा का ऐसा परिवर्तन हो जाता है जो फिर इस कलयुगी दुनिया में लौट कर नहीं आती। क्योंकि इस यात्रा में हमारा तीर्थ स्थान आत्माओं का धाम है, परम धाम, जिससे हम अनुभव करते हैं इस यात्रा दौरान, और हमें पता है कि वापस हमें उसी धाम में जाना है जिस घर से आत्मा इस संसार में आई थी पाठ बजाने। तो उसी धाम में मुझे वापस जाना है, और जिस शुद्ध स्वरूप में मैं आई थी उसी शुद्ध स्वरूप में वापस लौटना है। जैसे माता पिता माँ खासकर अपने बच्चे को नहला धुला करके, स्वच्छ कपड़े पहनाकर, नाश्ता वाश्ता खिलाकर, पेट भर के फिर भेजती है मैदान में बच्चे को कि जाओ बच्चे खेलो, क्योंकि बच्चा है खेलेगा, घर में बैठ के क्या करेगा, तो खेलने भेजती है। लेकिन बच्चा जब खेलने लगता है तो खेलते खेलते मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, कपड़े भी मैले, मुंह पर भी दाग, कई बार तो गिरता है तो हड्डियों में भी चोट लगती है या हाथ पैर कभी गंदे हो जाते। अब शाम तक वो खेलता रहता है, खेलता रहता है, पर जब अंधेरा होने लगता है तो माँ देखती है कि अभी तक बच्चा वापस नहीं आया। बच्चा तो खेलने में इतना मग्न हो गया जो उसको घर भी भूल गया, माँ भी भूल गई, सब कुछ भूल गया। खेलता ही रहता है, खेलता ही रहता है। खुद जाती है मैदान में और बच्चे को वापस लेके आती है। अगर बच्चा नहीं भी कहना मानता है तो भी उसे छोड़ देती है क्या? हाँ, मैदान में छोड़ देगी? नहीं, वापस जबरदस्ती भी उसको लेकर के आती है। और जब तक उसको स्वच्छ नहीं करती फिर से, तब तक उसको घर में नहीं एंटर करने देगी, बिस्तर पर नहीं लेटने देगी। तो इसलिए उसको स्वच्छ भी करती है, तब उसको खुशी होती है कि हाँ बच्चे ने खेला भी, अब सांझ हुई तो घर भी वापस आया। और अगर बच्चा नहीं मानता है तो जबरदस्ती भी उसको लेकर ही आती है, छोड़ नहीं सकती। तो परमात्मा भी हमारी माँ की तरह है। हम आत्माओं को जो इतनी स्वच्छ पवित्र आत्माएं हैं उनको खेलने के लिए संसार में भेजा, अगर ये कहें तो गलत नहीं है। हम खेलने आए इस संसार में। पुरुष और प्रकृति के बीच में ये खेल है। शरीर है प्रकृति और आत्मा है पुरुष। और इस खेल खेल में कभी पुरुष की जीत है, कभी प्रकृति की जीत है। और इस खेल में आत्मा मैली भी हो जाती है, विकारों के वशीभूत भी हो जाती है। परंतु जब वापस जाने का समय आता है तो आत्मा वैसे ही नहीं जा सकती है, उसे स्वच्छ होकर पवित्र होकर वापस जाना होता है। इसलिए परमात्मा हमारी सच्ची माँ के रूप में हमें फिर से पवित्र करने लिए, स्वच्छ बनाने लिए ये राजयोग सिखा रहे हैं। और हमें कहते हैं, हे बच्चे तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। भगवान का वायदा है कि हमें फिर से वो स्वच्छ कर देगा, लेकिन उसकी शर्त कंडीशन रखता है साथ साथ कि तू मुझे याद कर। तो राजयोग अर्थात परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचान कर आत्मा उसे याद करती है, और इसे ही हम योग की अग्नि कहते हैं। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो वो अग्नि उस चीज का परिवर्तन जरूर करती है, जैसी चीज उस हिसाब से परिवर्तन। अगर सोना डालते हैं आग में तो सोने को आग शुद्ध कर देती है, उसके खाद निकाल देती है, वो मेल्ट हो जाता है। जो खाद है ना, तांबा या चांदी लोहा, वो सब निकल जाता है और सोना शुद्ध हो जाता है। अगर आग में कोई कठोर चीज डालते हैं, जैसे कोई सब्जी, आलू, बैंगन, टमाटर, है ना, थोड़े कठोर होते हैं, तो आग में पड़ते ही वो नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कठोर चीज नरम हो जाती है। फिर कोई बहुत सॉफ्ट चीज होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, जैसे ईंट, मिट्टी की ईंट होती है, मिट्टी से बनाते हैं पर वो आग में डालते हैं तो क्या होता है, स्ट्रांग हो जाती है। फिर कितना भी गिराओ वो टूटती नहीं है, नहीं तो मिट्टी तो टूट जाए। तो वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है। कचरा डालते हैं, कचरा है ना, आग में डालते हैं तो वो कार्बन बन करके उड़ जाता है, तो उसका रूप बदल जाता है। अर्थात जो भी चीज आग में पड़ी वो रूप रंग गुण सब बदल देती है। तो ये राजयोग भी एक अग्नि के समान है। आत्मा इस योग की अग्नि में तपती है और जो कुछ किचरा है वो सब भस्म हो जाता है, खाद है वो निकल जाती है, विकृतियां सब समाप्त हो जाती है और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। क्योंकि आत्मा को अपने उस शुद्ध स्वरूप की पहचान मिल जाती है और ये भी पहचान मिलती है कि जिस घर से तुम आए थे उस शुद्ध स्वरूप में थे, शुद्ध घर में थे, अब वापस उसी घर में चलना है। और शिव बाबा कहते हैं मैं लेने आया हूं, इसलिए वापस चलना है तो मुझे याद करो। तो ये राजयोग एक यात्रा के समान है जिसमें लक्ष्य है कि आत्मा को शुद्ध होकर अपने घर जाना है, घर में पहुंचना है। क्योंकि यात्रा पर जब निकलते हैं तो लक्ष्य सामने होता है, कहाँ जाना है, ऐसे नहीं घर से निकल पड़े। आप लोग मुंबई से आए, माउंट आबू आना है, आबू आना है तो पता था कैसे आना है, किस ट्रेन को पकड़ना है, तो लक्ष्य का पता होता है, स्थान जहाँ जाना है उसका पता होता है, ऐसे ही नहीं निकल पड़ते। जैसे ही निकल पड़ते बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी ठिकाने की पहचान के, तो वो तो भटकते हैं लोग। पर जो यात्री होता है उसके सामने लक्ष्य होता है यात्रा की का, मंजिल का। तो आत्मा का की जो मंजिल है वो परमधाम है, इसीलिए कहा न, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। हम इस संसार में तो आ गए, मुसाफिर हैं, पर जाना कहाँ है, तो जहाँ से आए हैं वहाँ जाना है और जिस स्थिति में आए हैं उसी स्थिति में जाना है। तो उसके लिए परमात्मा ये राजयोग की युक्ति बता रहे हैं। तो इस राजयोग के मार्ग पर जब आत्मा अग्रसर होती है तो हमारे सामने कई विघ्न आते हैं। कौन से विघ्न आते हैं जो आत्मा की शुद्धि के मार्ग में रोड़ा बनते हैं, विघ्न बनते हैं, रुकावट बनते हैं। सबसे पहली बात है हमारे अशुद्ध विचार, क्योंकि मन विकारों के वशीभूत हो चुका है, मैला हो गया है। तो अशुद्ध विचार जो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के जो विचार मन में आते हैं, जो देह अभिमान के कारण उत्पन्न होते हैं, वो बहुत बड़ा विघ्न बनते हैं हमारे सामने। और दूसरा विघ्न बनते हैं हमारे ही कई जन्मों के अशुद्ध संस्कार, क्योंकि आत्मा जो जो कर्म करती है उन कर्मों का प्रभाव जो संस्कार कहलाता है वो आत्मा में ही तो निहित हो जाते हैं संस्कार, तो वो मन पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो कई अशुद्ध संस्कार, मनोविकार, नकारात्मक सोच, कई जन्मों के अनेक आत्माओं के साथ कर्मों के हिसाब किताब, इच्छाएं मन की, ये सब बीच में बहुत विघ्न बनती है। तो जब हम योग में बैठते हैं और आरंभ करते हैं ये बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा की ओर दिशा देने के लिए, तो अनेक प्रकार के ये विघ्न सताते हैं। परंतु घबराना नहीं चाहिए, राजयोग एक यात्रा के समान है। लेकिन कई समझते हैं इस यात्रा की मंजिल ईश्वर है, परमात्मा से मिलना इस यात्रा का लक्ष्य है। हम कहते नहीं, परमात्मा तो मेरा साथी है, उसको अपना साथी बनाओ, यात्रा पर कोई अकेला नहीं निकलता है, साथियों को साथ ले जाता है। कई बार निकलते ना, अभी आप लोग आए तो अकेले थोड़ी आए, चलो मामा चाचा काका भाई भतीजा हाँ फ्रेंड आप चलो हमारे साथ, माउंट आबू जा रहे हैं तो अपने साथ संगठन को लेकर के आए, आ गए ना, तभी तो इतने पहुंच सके हो। तो इसीलिए अकेले नहीं जाते यात्रा पर, आत्मा परमात्मा को अपना साथी बना करके इस यात्रा पर निकले। ये नहीं कि परमात्मा को मिलना है यही मेरा अंतिम लक्ष्य है, ये तो मेरा तात्कालीन लक्ष्य है, आत्मा का परमात्मा से मिलन यही तो योग है। योग आरंभ में ही हो जाता है, पर मिलन का परिणाम क्या है कि आत्मा का शुद्धिकरण हो। जैसे बताया दूध में चीनी मिलाई, मिल तो गई, परंतु यही लक्ष्य नहीं है कि चीनी एक दूध में पड़े, पर ऐसे पड़े जो दूध मीठा हो जाए। अगर ऐसे ही डाल दो पर मिलाओ नहीं कुछ भी, तो चीनी अलग ही रहेगी, दूध अलग ही रहेगा, मीठा नहीं होगा दूध। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन ये तात्कालीन लक्ष्य है, पर अंतिम लक्ष्य है कि आत्मा परमात्मा से मिलन मनाकर परमात्मा के सभी गुणों को अपने अंदर समाकर उस पिता परमात्मा के समान बन जाए, इतना शुद्धिकरण हो जाए और अपने असली स्वरूप में आ जाए। परमात्मा नहीं बन सकती आत्मा, आत्मा तो सदा ही आत्मा है, परमात्मा सदा ही परमात्मा है, क्योंकि परम पिता है, पिता सदा ही पिता होता है। बच्चा अपने बच्चों का पिता बनेगा, लेकिन अपने पिता के आगे सदा ही बेटा है, नहीं? तो पिता सदा ही पिता होता है, शिक्षक सदा ही शिक्षक होता है, गुरु सदा ही गुरु होता है, चाहे शिष्य कितना भी आगे बढ़ जाए। जैसे स्वामी विवेकानंद कितना आगे बढ़ गए, दुनिया में अपना नाम कमाया, लेकिन फिर भी कहने में आएगा कि वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का शिष्य था। तो गुरु का स्थान कभी बदलता नहीं, शिक्षक का स्थान बदलता नहीं, पिता माता पिता का स्थान बदलता नहीं। तो परमात्मा कोई स्टेटस नहीं है जो हम पुरुषार्थ से परमात्मा बन जाएंगे, नहीं, वो तो सदा ही माता पिता है, क्योंकि उनका कर्तव्य ही सबसे न्यारा है। जो माता पिता शिक्षक गुरु रक्षक का कर्तव्य होता है, इसीलिए वो सबसे ऊंचा भी है तो सबसे न्यारा है भी है, लेकिन उनके सानिध्य में हम आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है, जो वापस आत्मा अपने स्थिति तक पहुंच जाती है जो उसकी असली स्थिति थी। तो इस राजयोग की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। आत्मा जब तक उस परम धाम में पहुंचे बिल्कुल शुद्ध होकर, उसी बीच अनेक पड़ाव हैं। तो पहला कदम है या पहली अवस्था है श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन, जिसमें बुद्धि के द्वारा मन को विचार देने होते हैं शुद्ध। केवल मंत्र जाप ही नहीं है, पर मन को काम देना है, भले हाथों को आंखों को मुख को काम मत दो, वो तो शांत बैठे हैं, लेकिन मन यात्रा कर रहा है बुद्धि के सहारे, जिसने ईश्वर को साथी बनाया है। तो आत्मा अपना चिंतन करे, परमात्मा का चिंतन करे, घर का चिंतन करे, आत्माओं का जो घर है जहां हमें जाना है, आत्मा अपने मूल स्वभाव का चिंतन करे। तो जो आपको आत्मा परमात्मा की बातें बताई, उनका चिंतन करना मन के अंदर, ये राजयोग की पहली अवस्था है। जैसे दूध को रखने लिए शुद्ध बर्तन चाहिए, तो बर्तन को पहले शुद्ध करना पड़ता है। तो मन को शुद्ध करने के लिए श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन करना होगा, लेकिन इस पहली अवस्था में संघर्ष चलता है। क्योंकि मन को आदत नहीं है अच्छे विचारों को लाने की। व्यर्थ विचार बहुत आते हैं, अशुद्ध बहुत आते हैं, साधारण बहुत आते हैं, ज्ञान के आध्यात्मिकता के विचार तो बहुत मुश्किल से आते हैं। क्यों मुश्किल से आते हैं? क्योंकि अध्ययन ही वो नहीं है। अध्ययन ही कोई सांसारिक बातों का है, जो अध्ययन होगा वही तो विचार आएंगे ना मन में। तो इसीलिए इसके लिए कुछ आवश्यकताएं भी है। जैसे यात्रा पर जाते हैं तो कुछ साधन भी अपने साथ रखते हैं ना, कहीं ठंडी लगेगी, कहीं क्या होगा, बीमारी आएगी तो दवाई भी रखेंगे, कंबल भी रखेंगे, खाना पीना भी रखेंगे, क्या पता कहाँ मिलेगी यात्रा में ये सब बातें। तो इसलिए अपने साथ रखते हैं कि समय पर ये यूज कर सके। अगर रोज ज्ञान का भोजन हमें मिलता रहेगा, ताजा ताजा भोजन, तो हम वही मनन चिंतन कर सकेंगे। इसलिए जो भी हमारे पास विद्यार्थी आते हैं, हम उनको कहते हैं रोज आत्मा को भोजन दो ज्ञान का। जैसे रोज हम स्नान करते हैं जिससे शुद्धि होती है, तो आत्मा की शुद्धि के लिए ज्ञान स्नान बहुत जरूरी है रोज। अभी वो स्नान ज्ञान का नहीं मिलता है। सवेरे सवेरे उठते ही कौन सा स्नान करते हैं? अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो सबसे पहला कौन सा मन को भोजन मिला? लड़ाई का, झगड़े का, है ना, मारामारी का, हत्याओं का, बलात्कार का, भ्रष्टाचार का, है ना। सवेरे सवेरे उठते ही वो न्यूज पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, CNN, BBC या जो कुछ भी, बस वही युद्ध, काम और क्रोध, बस यही न्यूज सवेरे सवेरे मिलती है। तो सवेरे यही भोजन कर लिया तो बताओ क्या होगा? जैसे फास्ट फूड ही कोई खाता रहे बस, तो शरीर को कहाँ से ताकत आएगी? पौष्टिक खुराक चाहिए, तो आत्मा को भी ज्ञान का सही भोजन चाहिए, तब आत्मा में शक्ति आएगी, मन वही सोच सकेगा। तो रोज ज्ञान स्नान चाहिए, रोज अमृत वेले उठना पड़ता है। हम लोग अमृत वेले इसलिए उठते हैं क्योंकि ये समय जो अमृत वेले का है, ये शुद्ध समय है। जब सब भोगी सो जाते हैं, योगी जागते हैं, वातावरण भी शुद्ध होता है। अशुद्धता जो वातावरण में रात को होती है वो खत्म हो जाती है, सब सो जाते हैं। चोर भी सो जाते होंगे 4 बजे के बाद, है ना, लुटेरे डाकू ये सब 12-4 बजे तक सब कुछ चलता है, उसके बाद वो भी सो जाते हैं। उस समय योगी जागते हैं और उसको अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जब परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन हम जोड़ सकते हैं। तो इस डायरेक्ट कनेक्शन को जोड़ने के लिए हम लोग कोड नंबर भी बताते हैं। जैसे कोड नंबर देते हैं ना टेलीफोन का, तो पहले तो मैनुअल होता था, टेलीफोन एक्सचेंज में कहना पड़ता था कि हमको ट्रंक कॉल दो, हमको ये दो, वो दो, STD, तो डायरेक्ट लाइन तो थी नहीं, इसलिए मैनुअल होता था सब टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू। और बहुत अर्जेंट है तो लाइटनिंग कॉल करते थे, और सवेरे सवेरे बहुत सस्ता होता था, 1/4 रेट होती थी, है? और जल्दी भी मिल जाता था, दिन में शाम को तो महंगा पड़ता था और लाइन भी बहुत बिजी होती है। अभी की बात नहीं, मतलब पहले की बातें तो ऐसे ही थी। तो अमृत वेला सबसे सहज समय है परमात्मा से डायरेक्ट संबंध जोड़ने का, और उसके लिए शिव परमात्मा ने हमें बहुत अच्छा कोड वर्ड दिया है। देखो जब लोकल लाइन करते हैं ना, तो क्या करते है? 5 डिजिट 6 डिजिट जो होते हैं, बम्बई का 8 नंबर है तो 8 नंबर घुमाएंगे फिर कनेक्शन होता है। अब STD करना है तो क्या करते हैं? पहले 0 घुमाते हैं, तो 0 घुमाने से क्या होता है, जो लोकल लाइन है ना वो सब कट जाती है, माना उनको पार कर लेते हैं 0 करने से। और जिस शहर में मिलाना है उसका कोड नंबर होता है, जैसे दिल्ली घुमाना है तो 0 करके 1-1, माउंट आबू से मुंबई करेंगे तो 0 करके 2-2। तो उस शहर का कोड नंबर होता है, पर पहले जीरो करना पड़ता है, तो लोकल लाइन कट गई। फिर अगर आईएसडी करना है, विदेश में करना है, तो क्या करते हैं, दूसरा जीरो भी घुमाते हैं। अभी परम धाम से कनेक्शन जोड़ना है तो क्या करेंगे, क्या नंबर घुमाएंगे, तो हम कहते हैं तीसरा जीरो भी घुमा लो। तो तीसरा जीरो घुमाएंगे तो सीधा परम धाम से कनेक्शन हो जाएगा, इस धरती के जो भी लाइंस है ना, सबसे ऊपर चले जाएंगे, परम धाम तक लाइन जुड़ जाएगी और आप शिव बाबा से मिलन मनाना शुरू कर सकते हैं। क्यों मैं ये कह रही हूँ, इसके पीछे भाव क्या है, कई कहते हैं ना बहन जी मन नहीं लगता, क्योंकि बहुत व्यर्थ विचार आते हैं, तो व्यर्थ विचार वास्तव में अगर हम उनको डिवाइड करें ना, तो तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वो व्यर्थ विचार कौन से आते हैं, एक वस्तुएं याद आती है, धन संपत्ति वैभव मकान जमीन जायदाद, ये वस्तुएं या लग्जरीज़ जो कुछ भी कहो, इस संसार के साधन चीजें, कई बार वो चीजें याद नहीं आती पर व्यक्ति याद आते हैं, मेरा मामा चाचा काका बेटा बहू हाँ फलाना फलाना। जब कोई व्यक्ति मरने पर होता है ना, तब देखना होता है, मरते समय उसको कितनी बातें याद आती है, उसको कितना भी कहो भगवान को याद करो भगवान को याद करो, भगवान का याद है, भाई मेरा पैसा वहां रखा है, मेरा ये मकान वहां है, मेरी जमीन वो है, वो याद आएगी, ये सब छूटने वाला है नहीं, परंतु याद आता है। और कई बार वो नहीं याद आएगा परंतु व्यक्ति याद आते हैं, वस्तु नहीं, तो वो जब तक बेटा विदेश में है वो वापस नहीं लौटता है, उसका मुखरा नहीं देखते, तब तक प्राण तन से नहीं निकलते, क्योंकि बहुत मोह होता है। तो वस्तु और व्यक्ति, और तीसरी चीज कौन सी मन में आती है, कई बार कोई वस्तु भी याद नहीं आती, व्यक्ति भी याद नहीं आते, पर पता है मरते समय रोते हैं, बहुत रोते, हमने बहुतों को देखा है, इतना रोते हैं बात नहीं पूछो, भाई रोते क्यों, बस भगवान को याद करो ना, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन क्यों रोते हैं, क्योंकि वो जीवन की जो पुरानी बातें हैं ना वो याद आती है, बातें याद आती है, व्यक्ति वस्तु याद नहीं आते हैं, पर वो बातें घटनाएं, मेरे साथ ऐसे हुआ था, मुझे इतना दुख मिला था, मुझे कितना लोगों ने परेशान किया, मेरा सब कुछ लूट लिया, हाय मैं क्या करूं, अरे क्या करूं, हो तो हो गया ना, लेकिन बीती बातों को इतना याद करते हैं और याद करते करते रोते हैं, जबकि उस समय न वो बातें हैं, न वो व्यक्ति है, न वो स्थान है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन वो याद करके रोते हैं। अगर इसकी बजाय भगवान को याद करते होते तो बेड़ा पार हो जाता होता, लेकिन सारा जीवन यही किया, तो अंत के समय भगवान कहाँ से याद आएगा, नहीं याद आएगा। जैसे कोई विद्यार्थी अगर साल भर पढ़ाई नहीं करता है, खेलता ही रहता है, मौज मस्ती करता है, और परीक्षा का दिन कल है, आज किताब लेके बैठेगा तो बुद्धि में बैठेगा कुछ, दिमाग में आएगा कुछ भी नहीं, फिर रोता रहेगा, हाय मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई नहीं की, तो जो बाकी समय बचा है तो भी आज तक का वो भी वेस्ट कर देगा, रोता ही रहेगा। तो मनुष्य की स्थिति भी आज ऐसे ही हो गई है, किस समय अंतिम घड़ी आएगी ये पता थोड़ी चलता है, बाप बैठे बच्चा चला जाता है, ये कोई न सोचे मैं 100 साल तक जीऊंगा, कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए कभी भी अंतिम घड़ी हो सकती है, पर वो अंतिम घड़ी मेरी सुहाली जाए, सुखाली जाए, उस ईश्वर की याद में जाए, उसके लिए आवश्यक है कि बहुत काल का अभ्यास हो। तो पहली बात कि क्यों ये विघ्न आते हैं, क्योंकि व्यक्ति वस्तु और घटनाएं याद आती है। अब उसको कैसे हम खत्म करें, पहला जीरो लगाओ। पहला जीरो लगाना माना वस्तुओं को भुलाने के लिए, याद रखो मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक सितारा हूँ। इस संसार की वस्तु न मैं ले आई न ले जाऊंगी आत्मा, अकेली आई हूँ अकेली जाना है, हाथ खाली आई हूँ हाथ खाली जाना है। ये संसार की चीजें यहीं मिली और यहीं छूट जानी है, तो ये सदा ही याद रहे अकेले आए हैं अकेले जाना है। इसीलिए बताया वस्तु नहीं तो व्यक्ति याद आते हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब बहुत होता है। इतना हिसाब किताब होता है कि प्राण तन से छूटते ही नहीं है जब तक वो हमें छुट्टी न दे। बहुत मिसाल हमने देखी है। इसलिए ये कर्मों के हिसाब किताब भी चुकतू करने पड़ते हैं और वो मन को बहुत खींचते हैं। संबंध आज बंधन बन गए हैं, संबंध नहीं रहे, दुखदाई हो गए, नहीं तो संबंध तो सुखदाई होता है। लेकिन ये बंधन क्यों बन गए हैं? क्योंकि पाप कर्म के वशीभूत होके हम विकर्म बना रहे हैं और ये विकर्म बंधन बनाते हैं हमारे। इसलिए इनसे भी मुक्त होने के लिए दूसरा जीरो बाबा कहते हैं, शिव बाबा, कि सब संबंध मेरे से जोड़ो। मैं ही तुम्हारा मात पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन हूँ, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, हम लोग ये नारा लगाते हैं। फिर तीसरी बात जो घटनाएं याद आती है उसके लिए शिव बाबा ने तीसरा जीरो दिया है, और वो जीरो है, ये संसार एक ड्रामा है, इसको खेल के रूप में देखो, दुखी मत हो जाओ। कोई भी घटना घटती है उसमें दुखी मत हो जाओ, उसको अपने मन तक मत लो, एक साक्षी दृष्टा होकर के हर चीज को देखो, हर एक का पाठ देखो, बड़ा ही कल्याणकारी है। जो कुछ होता है उसमें कोई राज है, कोई कल्याण है जो हमें अभी समझ में नहीं आता है। इसीलिए कभी नहीं कहो हाय ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, हाय ये क्यों हो रहा है, नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, है ना? गीता का सार याद है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। अब ये जब मन में आ गया तो आत्मा निश्चिंत हो जाती है, और उस निश्चिंत अवस्था में परमात्मा से हम लगन लगा सकते हैं। ये विघ्न हमारे खत्म हो जाते हैं जो मन में विकृतियां आती है। तो पहली अवस्था है विचारों, श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन, जिसमें अशुद्ध विचार, अशुद्ध संस्कार, अनेक कर्मों के हिसाब किताब ये विघ्न बनते हैं। लेकिन घबराओ मत, आप सहज उनको पार कर सकते हो अगर श्रेष्ठ विचार मन में डालते जाएंगे। जैसे पानी मटके में है या बाल्टी में है पर गंदा है, अब उसमें साफ पानी भरना है तो क्या करना होगा? कई तरीके हैं साफ कर पानी भरने के लिए या रखने के लिए। अगर पानी बहुत है तो बस ऐसे ही रख दो, अपने आप पानी नलके से निकलता जाएगा साफ, और गंदा पानी निकल जाएगा साफ भर जाएगा। चलो पानी उतना ही है, ज्यादा नहीं है, तो उसको फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं, छानी से कपड़े से कपड़े में डालते हैं तो फिर वो साफ पानी आ जाता है, गंदगी रह जाती है, फिल्टर करते हैं। और अगर एकदम स्वच्छ साफ चाहिए तो विज्ञान ने तीसरा तरीका बताया, भाई कंडेंसेशन प्रोग्राम या डिस्टिलेशन प्रोग्राम है। डिस्टिलेशन करते हैं, आग देते हैं नीचे से, पानी को बाफ बनाते हैं, फिर वो बाफ बन करके फिर पानी नीचे आता है, वो साफ पानी हो जाता है। तो ये राजयोग भी शुद्धिकरण का मार्ग है। इसमें ज्ञान का मनन चिंतन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये नहीं पूछो ये क्यों विचार आते, ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं। आप ज्ञान के मनन चिंतन करते जाओ, वो अशुद्धता अपने आप निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। या तो सोचने से भी पहले सोचो मैं क्या सोचने जा रहा हूं, बुद्धि को पहले यूज करो, तो बुद्धि फिल्टर का काम करेगी और कहेगी ये गलत है ये मत सोचो और ये सोचो, तो जो गलत है सोचना उसको मत सोचो, वो रिजेक्ट कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, ब्रेक लगा दो, वहां जाना नहीं है। और तीसरा प्रोसेस है कि हम इतने श्रेष्ठ विचार मन में लाएं जो आत्मा का शुद्धिकरण सहज हो जाए। मैं कौन हूं? मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान शक्ति स्वरूप हूं। और ये जैसे आत्मा का शुद्धिकरण सहज होता है। परंतु इस अवस्था में बताया ना विघ्न पड़ते हैं। अभी अभी सोचेंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, कितना अच्छा लगेगा, और दूसरी घड़ी गुस्से का विचार आएगा, क्या समझता है वो, मैं भी उसको दिखाऊंगा, हाँ मैं भी कम हूँ क्या, अभिमान आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, नफरत आ जाएगी। तो ये ऐसे हुआ जैसे अमृत का एक घड़ा लिया, फिर एक बूंद जहर की पड़ गई उस अमृत के घड़े में, तो क्या हो गया, वह अमृत जहर बन गया। एक बूंद अमृत में जहर की पड़ी, अमृत इतना ज्यादा, पर एक बूंद जहर की उस अमृत के घड़े को जहर बना देगी। एक अशुद्ध विचार मन में आया तो जितनी मेहनत की शुद्ध विचार करने की, वो सब पर पानी फिर गया, है ना? फिर कहेंगे मेरे से तो होता नहीं। कई बार जैसे होम्योपैथी की दवाई मिलती है ना, डॉक्टर देता है बिल्कुल एक्यूरेट दवाई है, तो बहुत हाई पोटेंसी देता है, अगर ठीक दवाई फिट हो गई तो इतनी हाई पोटेंसी देता है, पर कहता है साथ साथ, देखो ये आपकी जो बीमारी ना बड़ी क्रॉनिक है, बहुत पुरानी बीमारी है, इस पुरानी बीमारी को ये दवाई ठीक करेगी लेकिन ये जड़ से निकालेगी, तो हो सकता है आपको लगे कि ये तो बीमारी बढ़ गई, पहले इतनी खांसी नहीं आती थी, अभी तो ये दवाई खाई तो और खांसी आने लगी, तो ये तो ठीक नहीं है। तो डॉक्टर पहले से बताएगा घबराना नहीं, ये जड़ से खत्म हो जाएगी, अंदर से निकल जाएगी, अभी तक जो तुमने दवाई दी वो जो बीमारी थी वो दबती जा रही थी, जड़ से नहीं निकली। तो जड़ से निकालने के लिए लगेगा ना कि भाई थोड़ा ज्यादा हो गया, पर वो ज्यादा नहीं होता है, वो अंदर से खत्म हो जाता है। तो कई भाई बहने कहते कि मैं योग में बैठता हूँ और मैं सोचता हूँ कितनी अच्छी अच्छी बातें मन में आती है, फिर पता नहीं क्या मन में विचार आ जाते हैं, जो कभी सोचा भी नहीं वो भी आ जाता है, कभी स्वप्न में भी नहीं आया वो बातें आ जाती, तो वो क्यों आती है बहन जी? हमको तो, हम तो चाहते भी नहीं, पहले कभी नहीं आई वो बातें मन में, तो हम कहते ये बहुत क्रॉनिक बीमारी है ना, एकदम बहुत पुरानी बीमारी है, इसलिए वो बाहर आएगी ना। पर घबराओ मत ना, डरते क्यों, डॉक्टर बैठा है ना, वो आपको आपको ठीक दवाई दे रहा है, लेकिन आप घबराओ मत, उसको लेते जाओ, ये सोचो कोई बात नहीं है, मीठी मीठी गोलियां हैं, हा? इन मीठी मीठी गोलियों में बहुत कुछ शक्ति भरी हुई है हमारी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए। तो पहली अवस्था में ये संघर्ष चलेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद आप महसूस करेंगे कि इस अवस्था से आप पार कर चुके हो, हमारी दृष्टि वृत्ति जो कई बार बुरी जाती थी फिर नहीं जाती, क्योंकि अभ्यास पड़ गया आत्मा को देखने का, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, सब आत्माएं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, तो मेरी दृष्टि भी शुद्ध हो जाएगी, कोई अगर गाली भी देगा हम कहेंगे कोई बात नहीं, हाँ इसका हिसाब किताब, तो हम कोई दुखी भी नहीं होंगे, सहज सहन कर लेंगे, निराश भी नहीं होंगे, यानी परिवर्तन आता जाएगा हमारे जीवन में, हमारे विचारों में। तो पहली अवस्था में संघर्ष है, पर जैसे ही उसको हमने ओवरकम किया तो दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं, और वो दूसरी अवस्था है जिसको कहते हैं रूह रूहान, यानी परमात्मा से अंदर ही अंदर बातें करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, दुनिया वालों से इंसान से बातें करना तो हम सब जानते हैं, आजकल तो कुत्तों से भी बातें करते हैं, बिल्लियों से भी बातें करते हैं, जानवरों से बातें करते हैं, और उनसे बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, जबकि बिल्ली का कोई जवाब नहीं मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। एक माता थी, वो बिल्ली से ही सारा दिन बातें करती रहती थी, कुछ भी गुस्सा आ जाए तो बिल्ली से ही गुस्सा करे, पर बिल्ली क्या करेगी, वो मियाओ कह करके उसका गुस्सा खत्म कर देती थी। हाँ, मियाओ बड़े प्यार से कहती थी, तो कहती थी मुझे इंसान पसंद नहीं है, कुत्ते बिल्ली पसंद है बस। लेकिन भगवान कहते कुत्ते बिल्ली से भले प्यार करो, मना नहीं है, पर इंसान से तो उनसे ज्यादा प्यार होना चाहिए ना, आखिर आपके हम जिन्स है। पर और ऊंचा जाओ तो आत्माओं का परमात्मा से प्यार होना चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अनादि अविनाशी संबंध है। तो अंदर ही अंदर भगवान से बातें करो। कई कहते हम भगवान से बातें तो करते हैं, जब कोई चीज चाहिए तो भगवान से ही मांगेंगे ना, तो भगवान से ही तो बातें करते हैं। लेकिन कईयों का ये प्रश्न है कि भगवान का जवाब तो आता ही नहीं है, पता नहीं उसको मेरी आवाज पहुंचती भी है या नहीं, तो फिर शायद नहीं पहुंचती तो चिल्ला करके बोलते हैं, जोर जोर से चिल्ला, और किसके पास ले जाए, भगवान के पास ही तो ले जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको पता ही नहीं कि मेरा पिता कितना बड़ा आदमी है, वो कहेगा डैडी मुझे एक लॉलीपॉप चाहिए, मुझे एक पेंसिल चाहिए, हाँ मुझे फलानी चीज चाहिए, छोटी छोटी चीजें। अरे पिता तो उसको राजा बना सकता है, छोटी छोटी चीजें क्या मानता है। तो भगवान तो कहते हैं मैं तुमको तो विश्व का महाराजा बना सकता हूँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण मानव से देव बना सकता हूँ, नर से नारायण बना सकता हूँ, इतना ऊंच देव पद तुम्हें दे सकता हूँ, जहाँ इच्छा मात्रम अविद्या है, तुम इस कलयुग की दुनिया की छोटी छोटी चीजें मांगते हो, है? समझा कि नहीं समझा? तो ये छोटी छोटी चीजें इस संसार की, भगवान कहते वो भूल जाओ, इसमें जो है उसमें संतुष्ट रहो। क्यों? दुनिया में कितने लोग हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है, ये क्यों नहीं सोचते हैं हम? कितने स्वार्थी हो गए हैं हम, मुझे ही चाहिए सब कुछ। दुनिया में इतने लोग हैं जिनको हमारे पास जो है उसका एक चौथाई हिस्सा भी नहीं है, 1/8 भी नहीं है, हम उनका कभी सोचते हैं कि हम उनको क्या मदद कर सकते हैं, बजाय कि हम भगवान से और मांगे? ये बहुत बड़ा दिल रखने का होता है, इसलिए क्या हम ये भगवान से अपने लिए मांगे? फिर कई कहते अच्छा मैं वस्तु है तो भगवान से नहीं मांगता, पर कम से कम शांति शक्ति ये तो मांगू। अब शिव बाबा कहते ये भी मांगने की चीज नहीं है, ये तो आपका अधिकार है, ये तो आपके पास ही है, तो क्या मांगे? फिर कई कहते कि अच्छा बहन जी हम ये गुण भी न मांगे, परंतु हम इतनी भूले करते हैं जीवन में, सारा दिन पता नहीं कितने भूले हमसे होती है, तो हम भगवान से माफी तो मांगे? एक व्यक्ति था, वो रोज भगवान को कहता था हे भगवान मैं भूलों का सागर हूँ और तुम क्षमा के सागर हो, इसलिए तुम मेरी भूलों को बख्श दो, मेरी भूलों को मत देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं भूलें करता रहूं और वो क्षमा करता रहे। लेकिन जो कर्म करेंगे फल तो मिलेगा ही, तो ये तो हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। परमात्मा तो बड़ा न्यायकारी है, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो न्यायकारी ईश्वर ऐसे कैसे माफ करेगा, हरेक को अपने कर्म का खाता तो चुकता करना ही है, जो करेगा वो तो भरेगा ही। तो क्या करे फिर? और चौथी बात, क्या भगवान को पसंद नहीं है? भगवान कई बार विचित्र बातें लोग करते हैं, भगवान को ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर अगर भगवान नहीं मानेगा तो फिर धमकी देते हैं। दुनिया में भी धमकी देते ना, तो मेरा ये काम नहीं करोगे तो देखना मैं क्या करता हूँ। तो भगवान को ऑर्डर करते हैं किसके लिए, हे भगवान तुम उसका सत्यानाश कर देना, और नहीं किया तो देखना मैं क्या करता हूँ। भगवान अगर नहीं करेगा तो लॉ मैं अपने हाथ में उठाऊंगा। अपने हाथ में लॉ उठाने की वो हिम्मत रखते हैं। अब ये सब बातें भगवान से मत करो, ये भगवान को पसंद नहीं है। तो क्या करो, क्या बातें करो भगवान से? पहली बात, दिल से शुक्रिया करो कि जो कुछ हमें भगवान ने दिया है ये उनका दिया हुआ है, वो अमानत है मेरे पास, उनकी अमानत है और मैं उसका सदुपयोग करूं, सेवा में लगाऊं, उनके प्रति लगाऊं, समाज के लिए लगाऊं, क्योंकि जो देंगे वही मिलेगा, अगर देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। लेने का हक हमें नहीं है जब तक मैं दूंगी नहीं। एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से मिले, इसीलिए और मांगने की बजाय जो है उसका धन्यवाद करो और मन में कहो, शिव बाबा ये आपका है, आपने हमें जिम्मेदारी दी है, हम इसकी जिम्मेदारी अमानत समझ करके संभालेंगे, आपका ही ये कार्य है, आपके ही बच्चों के लिए है, मेरा कुछ नहीं, ट्रस्टी बन जाओ। तो देखो मन इतना साफ स्वच्छ हो जाएगा, उस मन में प्रभु की याद बैठेगी और वो ईश्वर का प्यार आप अपने अंदर अनुभव कर सकोगे। इसीलिए धन्यवाद करके, उनकी अमानत समझ करके, उनकी आज्ञा पर चलो, तब ईश्वर का प्यार अनुभव होगा। दूसरा, गुण मांगने की बजाय अधिकार रखो, ये मेरा अधिकार है। जहाँ प्रेम है वहाँ अधिकार है, ईश्वर का प्रेम मेरा अधिकार है, जो उनके गुण है वो मेरे भी गुण है। मैं मांगू क्यों भिखारी बन करके, मैं भी वही गुणों की स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। तीसरी बात, भूलों का सागर मत बनो। अगर कोई भूल हुई तो परमात्मा को सच बता करके केवल माफी नहीं मांगो, लेकिन प्रतिज्ञा करो कि ये भूल फिर नहीं करेंगे। जैसे बच्चा कोई भूल करता है और मम्मी को कहता है मम्मी सॉरी, तो सॉरी तो मम्मी मान लेगी, माफ कर देगी, लेकिन साथ में ये भी तो कहेगी ना, अच्छा बेटा दोबारा नहीं करना। क्या कहेगी? कि वो बार बार सॉरी करे और बार बार मम्मी माफ करे। अगर बार बार माफी करती रहेगी तो देखना, ये कहीं दोष आप पर ही भी न चढ़ जाए। बच्चे को आप सुधारेंगे कैसे? माफी खाली करते रहेंगे तो सुधारना भी तो है ना, आंख भी दिखाओ। पर कहा जाता सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। बच्चे को बदलना भी तो है ना, उसकी आदतें बुरी थोड़ी रखनी है, हर इच्छा थोड़ी पूरी करनी होती है, समझाना भी होता है कि उसके लिए क्या फायदेमंद है क्या नुकसानकारक है। तो इसीलिए मैं भूले करता रहूं और माफी मांगू और सोच लूं भगवान ने माफ कर दिया, ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए प्रतिज्ञा करो, तो प्रतिज्ञा करने से शक्ति आती है दोबारा फिर वो भूल न करने की। एक बार भूल हो गई, उससे सबक सीख लिया, फिर न करें वो भूल, तब हम कहेंगे कि हाँ भगवान माफ करेगा, नहीं तो कर्म की भोगना तो भोगनी पड़ेगी हर हालत में। और चौथी बात, दूसरे के लिए कानून अपने हाथ में मत उठाओ। न भगवान को कहो कि उसको सजा दे, उसको हाँ ये सत्यानाश कर दे, वो भगवान पर छोड़ दो, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका हिसाब किताब वो भगवान जाने। लेकिन हमारे तरफ से क्या हो, शिव बाबा को कहो कि बाबा ये जिम्मेदारी आप उठाओ, आप जानो, ये आपका बच्चा है, मैं नहीं लॉ हाथ में उठाऊं। जैसे मैं आप छोटा सा मिसाल देती हूँ, एक माता हमारे पास आई थी, अपने बच्चे से बड़ी दुखी, बहुत दुखी थी। बच्चा बहुत तंग करता था, शराब पीता था, गुटखा खाता, सब आदतें थी। तो जब भी बच्चा लेट आए घर में तो रोज बच्चे को जा मर जा मर जा मर जा, वो दुखी होती थी। पर वो मरे भी ऐसे कैसे, इसके कहने से थोड़ी मरेगा, तो बहुत दुखी रहती थी, खाली मर जा यही अंदर से बद्दुआ निकलती थी। और वो बच्चा तो और चंट होता जाए। तो एक दिन किसी ने उसको कहा कि तुम दुखी मत हो, तुम माउंट आबू जाओ, वहां तुमको राजयोग तुम सीखो और तुमको शांति मिलेगी, ऐसे मत को अच्छा नहीं लगता। बच्चे को भी दुख तो होता है कि माँ ऐसे ही कहती रहती है मेरे लिए। सुधारने के लिए कुछ करे ना, खाली मर जा खाली कहती रहती है गुस्से में। तो या भगवान को, हे भगवान ये मरता भी नहीं है, ऐसे भी कह देंगे। तो जब वो माउंट आबू आई और यहाँ आपके तरह योग शिविर में बैठी, तो मुझे ये बात उसने सुनाई। तो मैंने कहा देखो पहले बहन जी ये बताओ, आप सचमुच चाहती हो कि वो मर जाए? कहते नहीं 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 बाप रे नहीं 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 नहीं। तो है ना हाथ वो पांव वो कान को हाथ रखते मुंह को हाथ, नहीं 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 नहीं। तो मैंने कहा जब आप चाहती नहीं हो तो मुख से निकालती क्यों हो ये शब्द? फिर कहती क्या करूं बहन जी, बहुत गुस्सा आता है, क्या करूं मैं, और कोई रास्ता नहीं, गुस्सा कैसे निकले, तो ऐसे ही कह देती हूँ। तो आप अगर चाहती नहीं हो तो वो शब्द मुख से निकालो ही नहीं। तो कहती फिर क्या करूं? तो मैंने कहा जो मैं कहूंगी वो करोगी? कहती हाँ करूंगी। तो उस मैंने कहा कि पहले आप उनके प्रति जो आपका मोह है ना, मोह मेरा बेटा, ये खत्म करो, आपका नहीं है वो। कहती मेरा कैसे नहीं है? मैंने कहा है आपका, पर ये जो दुखी आप होती हो ना, इसका कारण क्या है कि आप समझती हो ये मेरा बेटा है। आप क्या कहो जब भी उनको देखो, मन में सोचो ये शिव बाबा, शिव बाबा को कहो शिव बाबा ये आपका बच्चा है, ये आपने दिया है मुझे अमानत, आप इसको संभालो। भगवान को उनका बोझ दे दो, जो आप अपने सिर पर बोझ लेकर बैठी हो ना, मेरा बेटा, फिर अधिकार रखती हो, फिर मर जा कहती हो, उसके बजाय शिव बाबा ये आपका बच्चा है, आप इसे संभालो। और उस आत्मा के प्रति उसको आत्मा समझकर अपनी शुभ भावना रखो कि मेरे अंदर उसके प्रति शुभ भावना है कि ये आत्मा बदल जाए, बस ये कर सकती हो? तो उसने कहा देखूंगी कोशिश करूंगी। तो जब बच्चा सामने आए तो आए मर जा, फिर नहीं नहीं नहीं, ये बाबा का, ये शिव बाबा का बच्चा है, ये भगवान आपका है, ये आप इनको सुधारो, मेरी शुभ कामना, मेरी शुभ भावना। क्योंकि जो मेरा जो पोजेसिव नेचर था ना मेरा, ये हटा दो। आप ये क्यों सोचती हो मेरा, आप तो ट्रस्टी हो, इसीलिए दुख होता है आपको। तो शिव बाबा हमें क्या कहते हैं, ये बोझ मुझे दे दो। तो अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथ में, हाँ, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, जीत भी तुम्हारे हाथ में, हार भी तुम्हारे हाथ में। जैसे बच्चा अपने डैडी का, पिताजी की उंगली पकड़ता, हाथ पकड़ता, अब पिता उसको जहाँ ले जाए बच्चा निश्चिंत है, क्योंकि जानता है मेरा पिता मेरे साथ है, मैं कोई गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। तो परमात्मा को अपनी डोर सौंप दो और वो आपका साथी साक्षी बन करके आपको मार्ग दिखाएगा। जब भी कोई गलत काम आप करने जाएंगे तुरंत आपको रोकेगा, अंतरात्मा भी रोकेगी और शिव बाबा भी रोकेगा। और अगर भूल हो गई मन खाएगा भी, तो उसी समय आप संकल्प कर लो बाबा मैं दोबारा नहीं करूंगी। तो अंदर ही अंदर भगवान से बातें करो इस हिसाब से, तो आत्मा का शुद्धिकरण होगा। केवल प्रार्थना नहीं कि मांगा और हम सोचे भगवान से ये मिले ये मिले ये मिले, नहीं, कुछ देना भी सीखो। ये तन शिव बाबा आपका, तन रोगी है दुखी मत हो जाओ, शिव बाबा ये तन आपका है, आपको चलाना है। ये धन भी आपका है, धन से कोई पाप का कर्म नहीं करना है। तब देखो मन का शुद्धिकरण होगा और उसमें शिव बाबा की प्रीत बसेगी और वो प्रीत का सुख आप ले सकेंगे। तो इसको हम कहते हैं रूह रिहान। और तीसरी अवस्था है अव्यक्त अवस्था, जिसमें व्यक्त के सारे भाव खत्म हो जाते हैं, तेरा मेरा कुछ नहीं रहता, बस मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा गई, प्रेम स्वरूप आत्मा प्रेम के सागर में समा गई, आनंद स्वरूप आत्मा आनंद के सागर में खो गए। इसको कहते अव्यक्त अवस्था, जिसमें व्यक्त की कोई भी संसार के विचार मन में नहीं है, आनंद की लहरों में आत्मा लहराती है या उसकी गहराई में चली जाती। जैसे सागर की लहरों में लहराने का सुख अपना है और तले में जाने का सुख अपना है। तो शिव बाबा के गुणों के सागर की गहराई में चले जाओ और शांति, आनंद, खुशी, सुख, प्रेम की अनुभूति आत्मा करने लगती है। और ये अनुभूति करते 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 जिसमें चिंतन समाप्त, अनुभूति आरंभ। जैसे लगता है मैं भरती जा रही हूँ, भरपूर होती जा रही हूँ। और इस भरपूरता की स्थिति में चौथी स्टेज आती है, जिसको हम कहते हैं बीज रूप की अवस्था। बीज, क्योंकि आत्मा परम धाम में बीज रूप में है, एक बिंदु रूप में है। तो ऐसे महसूस होता है कि जो मैंने अपने अंदर भरा वो सिंधु समान शक्ति एक बिंदु में भर दी। जैसे सूरज की किरणें हम कॉन्वेक्स लेंस से फोकस करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस लिख ले और केंद्र पर एक कागज रख दे और फोकस करें किरणों को, तो क्या होगा? वो इतना बड़ा सूरज, उसका जो प्रतिबिंब बनता है कागज पर वो इतना छोटा होता है, पर उस बिंदु में पूरे सूरज की शक्ति है। और उसी वक्त वो कागज, जहाँ बिंदु सूरज का बना प्रतिबिंब, वहाँ कागज जलने लगता है। तो क्या किया, सिंधु को बिंदु में समेटा। तो अव्यक्त अवस्था में वो सारे गुण ईश्वर के हमारे अंदर समाते जाते और समाते समाते वो बिंदु में सिंधु की शक्ति की अनुभूति होती है। और वो अनुभूति अगर एक सेकंड के लिए भी हुई ना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस उपलब्धि के आधार पर आप बाद में महसूस करेंगे इतने हल्के हो गए, जैसे अनेक जन्मों का पाप भस्म हो गया, एक बोझ जो सिर पर था वो उतर गया, आत्मा हल्की हो गई, लाइन क्लियर हो गई। और जो लाइन क्लियर हो गई तो अभी टॉप गियर से दौड़ो उड़ो, महसूस होता है कि हम इतने हल्के होकर के हम उड़ सकते हैं, एक सेकेंड में परम धाम पहुंच सकते हैं। और महसूस करते कि अखंड ज्योति का महतत्व, उसमें मैं चमकता हुआ सितारा शिव बाबा के सामने विराजमान हूँ, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, और उस सिंधु से मुझे वो किरणें महसूस हो रही है, शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, शक्ति की किरणें। और उन संबंधों में मैं सर्व आनंद अनुभव कर रही हूँ, वो माता के रूप में, पिता के रूप में, बंधु सखा के रूप में, मित्र के रूप में, सद्गुरु के रूप में। ये अलग अलग विस्तृत रूप से अनुभूतियां हैं जो आप सेवा केंद्रों पर जाकर के और सुनना और करना। तो आप महसूस करेंगे हर रोज एक नया अनुभव आप कर सकेंगे, एक ऐसी नई नवीनता जीवन में आती जाएगी, एक ऐसा सच्चा आत्मा को रसा स्वादन मिलेगा शिव परमात्मा के परम सुख का, जिससे वो शक्ति बनती जाएगी। और यही शक्ति आपको कई विघ्नों से पार करेगी, ये हमारा विश्वास है। ठीक है।